विनीत फोन पर बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र वहां से जाते हुए अयांश पर पड़ी। उसे जाते देख विनीत मन ही मन खुद से बोला, इतनी जल्दी मिल भी लिया आरवी से, और ये इतने गुस्से और तेजी में कहाँ जा रहा है? तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो विनीत। हाँ दादू, दादू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और हाँ हम सब जल्द घर आ रहे हैं, डोंट वरी, कहते हुए विनीत ने फ़ोन काट दिया और अयांश के पीछे भागा। अयांश अपने शर्ट की बाजू सही से फोल्ड करते हुए हॉस्पिटल के बाहर की ओर बढ़ रहा था। विनीत पीछे से उसे आवाज़ दे रहा था, पर उसने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। विनीत ने अपनी स्पीड बढ़ाई और साथ आ गया और तेज़ी से चलते हुए हाँफते हुए बोला, आवाज़ दे रहा हूँ सुनता नहीं क्या? सुना तो रुका क्यों नहीं? यूं ही? क्या यूं ही? मेरा चीखते भागते बुरा हाल हो गया, देख सांस भी नहीं ली जा रही है ठीक से, विनीत आ भरते बोला। तो किसने कहा चीखो भागो, आराम दो खुद को, ठहर जाओ थोड़ी देर, सांसें सही से चलने लगेंगी, अयांश ने अपने कदमों में और तेजी लाते हुए कहा। विनीत साथ साथ भागते हुए, कमाल है, अगर मैं ठहर गया तो तू निकल जाएगा? अच्छा बता अब क्या हुआ और इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अयांश चलते चलते, मेरा छोड़ो, ये बताओ सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना, जैसा कहा था सब हो गया ना? हाँ हॉस्पिटल का सब हो गया है, तुमने बोला था कि आरवी को जल्द ले जाना है यहाँ से घर, किसी को पता नहीं चलेगा अयांश मेहरा की वाइफ के साथ हुए इस एक्सीडेंट के बारे में, तो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं, सुबह होते ही सब अरेंजमेंट घर पर हो जाएंगे, आरवी को वहीं हॉस्पिटल की सब फैसिलिटी मिल जाएंगी, डॉक्टर नर्स सब, और मेरी इंस्पेक्टर से भी बात हो गई है, सक्षम वालिया स्ट्रिक्ट कस्टडी में है, बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच, अब उसका बच पाना भाग पाना आसान नहीं, मैंने पहले ही कहा था तुझे उसको जेल में ही डलवा दो, अगर तू पुरानी मिल में रखने की बजाय पुलिस के हवाले करता तो आज जो हुआ वो नहीं होता। विनीत के ये कहते ही अयांश के कदम रुक गए, उसने बिना विनीत की ओर देखे कहा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो पछताना पड़े, एक बार मौका मिला उसे भागने का, बार बार मिले इतनी भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं, उसकी किस्मत उसी दिन मेरे हाथों में आ गई थी जब उसका सच जाना था, और मैंने कुछ गलत नहीं किया उसे पुरानी मिल में रखकर, कुछ सजा देना तो मेरा भी बनता है, कानून तो अपना काम कभी भी कर सकता है, वो तो तू वहां भी कर देता, जैसा सलूक उसके साथ पुरानी मिल में हुआ वहां जेल में भी हो जाता? नहीं होता, जेल में सब कैदी होते हैं और वो मेरा गुनाहगार, स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता ना उसे, जैसा पुरानी मिल में उसे फील करवाया मैंने, और तू क्या चाहता है सबको पता चले कि अयांश मेहरा के करीबी दोस्त ने उसके साथ धोखा किया? अयांश ने विनीत की ओर देखते हुए कहा। ये सुन विनीत खामोश हो गया और उसने नजरें झुका ली, तभी अयांश बोला, सक्षम वालिया जो लाइफ जी रहा था हाई स्टैंडर्ड वाली, उसे एक ही झटके में मैंने ऐसी लाइफ दे दी जहां उसकी पसंद का कुछ नहीं था, ना खाना ना पीना और ना चैन से सोना, पहली जेल में डाल देता तो उसे अपने जैसे ही दिखते चारों ओर, तो शायद ही ज्यादा मुश्किल होता उसका वहां रहना, पर जैसे मैंने उसे रखा और उसके साथ किया वो तो उसने ख्याल में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो अकेला था उस जगह, रह रहकर उसे दर्द मिल रहा था, मार पड़ रही थी, सो जो मैं चाहता था वही उसके साथ मेरे कहने पर हुआ, मैंने उसकी जिंदगी पल भर में बदल ली, आसमान के ख्वाब देखने वाले सक्षम वालिया का अब जमीन पर भी रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। दांत पीसते हुए विनीत ने हाँ में सिर हिलाया। पर वो वहां से भाग तो निकला ना, और तूने ये तो नहीं सोचा था ना? ये सुनते ही अयांश की भौहें सिकुड़ गईं और उसने गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, ये उन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ, पर ऐसी लापरवाही करने वालों के साथ मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। विनीत हैरान होते हुए, तू क्या करने वाला है धीरू और उसके आदमियों के साथ? अयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए, मेरे दिए काम में कोई गलती करे आई डोंट लाइक, उनसे हुई लापरवाही अब उन्हें अच्छे से काम करना सिखाएगी, अपनी आगे की लाइफ में कभी इतने केयरलेस होकर काम नहीं करेंगे। मतलब तुमने क्या करने का सोचा है अयांश उनके साथ? और उन्होंने तो माफी मांगी थी ना, सक्षम चालाकी कर निकल गया वहां से, नजर हटी दुर्घटना घटी। इतना कहते ही अयांश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जो कि पार्किंग एरिया में खड़ी थी। बोल अयांश मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कम से कम इतना तो बता दे अब कहाँ जा रहा है? आरवी यहाँ अकेली है? घर जा रहा हूँ। अकेली कैसी है? उसका देवर जो उसके साथ है, अयांश ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ये सुन विनीत के कदम रुक गए, वो अयांश की ओर देखता रहा और वो वहां से उसी वक्त चला गया। कमाल है, जब मैं उसे भाभी बोलूं तो सीधा गला पकड़ लेता है, और अब देखो देवर के नाम से खुद ही मुझे बुलाकर चला गया। पता नहीं ये अयांश मेहरा कैसी अजब गजब सी पहेली है, जितना समझूं उतना ही उलझा नजर आता है, विनीत ने खुद से कहा। तभी उसका फोन बजा, फोन रिसीव कर विनीत ने बात की और फिर फोन काटकर पैंट में रखते हुए बोला, ओ तो धीरू और उसके आदमियों को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया अयांश ने, और सक्षम बालिया को तो वैसे ही उम्र भर जेल में सड़ने वाला है, फांसी जैसी आसान मौत तो उसे अयांश देगा ही नहीं, किसी से गुनाह हो जाए या बड़ी गलती, अयांश तो उन सबको अपने हिसाब से सजा देता है, माफी की गुंजाइश मात्र नहीं है, भूल सुधारने का मौका भी तो किसी को 1-2% ही देता है, वो भी तब जब तेरा मन करता है, वरना तेरा दिया मौका और माफी कहाँ किसी को मिल पाती है। सोच सोच कर डर लग रहा है मुझे अब, इतना तो जान गया कि सक्षम की वजह से तू आरवी के साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर रहा है, वजह कुछ और है, और क्या वो सिर्फ तुझे पता है? लगता नहीं आरवी ने कोई बड़ा गुनाह किया है या कुछ गलत, फिर भी उससे तुझे नफरत है। क्यों? काश अयांश इस मामले में तुझसे कोई गुनाह और गलती ना हो जाए, वरना दूसरों को सजा देने वाला खुद के साथ क्या करेगा, ये सोच मेरी सांसें थमसी जाती हैं। मुंह से फूंकते हुए इतना कह विनीत मुड़कर वापस हॉस्पिटल में चला गया। आरवी के पास वार्ड में पहुंचा तो नर्स ने बताया कि ये सो चुकी है, इंजेक्शन का डोज हैवी था, पूरी तरह होश आने में वक्त लगेगा। विनीत ने हाँ में सिर हिलाया और आरवी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोला, समझ नहीं आता आरवी, क्या दुआ मांगो, तुमसे कुछ गलत ना हुआ हो या मेरे दोस्त अयांश को कुछ गलत फहमी ना हुई हो तुमको लेकर। तुम्हें देख लगता है तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती हो, उल्टा तुम्हें हर्ट किया उस सक्षम वालिया ने अपनी चालाकी से, धोखे से, झूठा प्यार दिखाकर। अयांश का भी समझ नहीं आता वो क्यों तुमसे नफरत करने लगा, क्यों नाराज है। और सच कहूं तो आज से पहले अयांश मेहरा से कोई गलती, कोई गुनाह नहीं हुआ है अनजाने में की। फिलहाल तो यही चाहता हूं तुम जल्द ठीक हो जाओ, दादू बहुत परेशान है, वेट कर रहे हैं घर पर। इतना कह विनीत ध्यान रखना नर्स से कहकर बाहर आकर बैठ गया। उधर अयांश घर पहुंचा तो देखा दिनकर जी सोफे से सिर टिकाए हॉल में ही बैठे थे, राधे भी उनके पैरों के पास बैठा था। तभी अयांश के कदमों की आहट सुन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। अयांश हैरान होता हुआ दिनकर जी के पास आया, तब तक राधे खड़ा होकर दूर हो गया। तभी अयांश राधे पर चिल्लाते हुए बोला, दादू को सुलाया नहीं तुमने, ये अपने कमरे में होने चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठा कर रखा है। राधे नजरें झुकाते हुए, वो अयांश बाबा, मैंने कहा था पर मालिक माने ही नहीं। तभी दिनकर जी उठ खड़े हुए और अयांश की ओर देखकर बोले, चिल्लाना और डांटना बंद कर, मैं ही नहीं गया बस। दरवाजे की ओर देखते हुए, आरवी कहाँ है अंशु, तू लाने गया था ना, मैं यहीं बैठा इंतजार कर रहा था उसका, ले आया ना उसे। तभी अयांश ने दिनकर जी को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया, बैठिए पानी लेकर आओ दादू के लिए।
जी कहते हुए राधे भागकर पानी लाने चला गया। तभी दिनकर जी का ध्यान अयांश की व्हाइट शर्ट पर गया जो खून से सनी हुई थी। ये देख वो घबरा गए और शर्ट छूते हुए बोले, खून अंशु, ये क्या है, सब ठीक है, वो बच्ची ठीक है ना, कहाँ है? विनीत बोला था आ रहे हैं जल्द घर लेकर। बोलना बेटा कहाँ है वो, चुप क्यों है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, ये खून किसका है, तुझे तो चोट नहीं आई? एक ही साथ दिनकर जी ने इतने सवाल कर डाले कि अयांश उन्हें शांत करवाने के लिए उनका चेहरा हाथों में थाम लिया। रिलैक्स दादू रिलैक्स, सब ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ, आप शांत हो जाइए प्लीज शांत। तभी राधे दो ग्लास पानी ले आया, अयांश ने उससे ग्लास लिया, पानी पीजिए। दिनकर जी हाथ हटाने लगे तो अयांश ने पहले पानी पीजिए दादू कहते हुए उनको पानी पिलाया। राधे ने अयांश को पानी देना चाहा तो उसने उसे घूर कर देखा, ये देख राधे पीछे होकर खड़ा हो गया। बात क्या है, विनीत तो कुछ और ही बोल रहा था अंशु, बताना बेटा, दिनकर जी ने फिर अयांश से परेशान होते हुए पूछा। तो अयांश उनका हाथ थामे बोला, मैं उसे बचाने पहुंच गया था, उसके सामने सक्षम का सच भी आ गया, मुझे मारने के लिए सक्षम ने मेरी तरफ कुर्सी फेंकी तो वो बीच में आ गई, मुझे धक्का देकर चोट लगने से बचा लिया, पर वो कुर्सी खुद उसके आ लगी, उसके सिर में चोट लग गई थी दादू, मैं और विनीत उसे फिर हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवा दिया, अब ठीक है, होश भी आ चुका है, कहते हुए अयांश ने दिनकर जी को जो बताना था वो बता दिया। दिनकर जी हैरान होते हुए, क्या उस बच्ची को चोट लग गई, हॉस्पिटल में है और मुझे बताया भी नहीं, या आप ही जानते हैं क्यों नहीं बताया, पहले ही परेशान थे और हो जाते, और अब बता दिया तभी देखो परेशान हो रहे हो, कहा ना आपसे वो ठीक है अब दादू, परेशान ना हो तो क्या खुशी मनाऊं, ना मैं भेजता ना ये सब होता उसके साथ। दिनकर जी अयांश से अपने हाथ छुड़ाकर सर पकड़ते हुए बोले। अयांश उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, डोंट डू दिस, आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हैं दादू और ना ही करेंगे, सुना आपने, ये बात फिर नहीं होनी चाहिए आपकी जुबान से। दिनकर जी ने अयांश की ओर देखा, ये खून उसका ही है, अयांश ने हाँ में सिर हिलाया, हॉस्पिटल ले जाते वक्त लग गया, वो पक्का ठीक है ना, सच में उसे होश तो आ गया ना, कोई और बात तो नहीं है ना, वो घर क्यों नहीं आई, दिनकर जी ने फिर सवाल किया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा दादू, आपको यकीन नहीं मुझ पर, है पर तू सच भी तो छुपाता है ना। ये सुन अयांश दूसरी तरफ देखते हुए, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है दादू, और ये आप भी जानते हैं, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, विनीत बता नहीं पाया पर मैंने आपसे जो कहा है सच कहा है, अभी वो ठीक है, आप यूं ही चिंता कर रहे हैं इतनी। दिनकर जी, कैसे ना करूं चिंता, मेरे पोते को बचाकर खुद मार खा ली उस बच्चे ने और वो तकलीफ है, तुम घर क्यों आए, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था ना बेटा, उसने जान बचाई है तेरी। ये सुन अयांश उनकी ओर देखते हुए, हाँ तो मैंने भी बचा दी और वहां विनीत है दादू। दिनकर जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मिलना है अभी आरवी से। नहीं दादू, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो सुबह होते ही घर आ जाएगी, तब मिल लेना, मैंने कहा ना आपसे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसकी, डॉक्टर है वहां और आप रात भर नहीं सोए, आपको आराम करना चाहिए, अयांश दिनकर जी को समझाते हुए बोला। दिनकर जी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। ये सुनते ही अयांश सोफे से उठ गया। राधे दादू को कमरे में लेकर जाओ। दिनकर जी भी उठते हुए, मैं हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा हूँ अंशु, जानता हूँ, पर आप नहीं जाएंगे, आए तब मिल लेना, जिद मत कीजिए, जाकर रेस्ट कीजिए। ओ, तो जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें है? मैं जिद नहीं कर रहा, चिंता हो रही मुझे उसकी, खुद भी घर चला आया। फिलहाल तो ये आप भी जानते हैं दादू, यहाँ कौन कितना जिद्दी है। फालतू की चिंता करना बंद कीजिए, वरना याद रखिए आप, आपको हुई थोड़ी सी तकलीफ का हर जाना वहीं भरेगी, और घर आएगी तब मिलना तो दूर, मैं आपको उसे देखने भी नहीं दूंगा। मेरी बात मानिए और जाइए कमरे में, लेकर जाओ राधे, अयांश थोड़ा सा सख्ती से बोला। ये सुन दिनकर जी अयांश के चेहरे की ओर एक टक देखने लगे। तभी राधे उनके पास आते हुए बोला, चलिए मालिक, अयांश पापा सही कह रहे हैं, आपका आराम करना जरूरी है। तभी दिनकर जी बोले, पूरी दुनिया से सख्ती से बात करने वाला अयांश मेहरा आज मुझसे उसी लहजे में बात कर रहा है। मेरा अंशु तो यहाँ है ही नहीं, आंखों में नमी लाते हुए, मैं पूरी दुनिया से किस भी तरह से पेश आऊं, पर आपके लिए आपका अंशु ही रहूंगा। खुद को तकलीफ मत दीजिए, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। समझाने की या ब्लैकमेल करने की? ऐसा कुछ नहीं है दादू, आप मानेंगे नहीं तो जिस तरह मजबूरन मुझे आपसे ऐसे बातें करनी पड़ रही हैं, आप जिद पर अड़े रहे हॉस्पिटल जाने की, तो मुझे वो सब भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे दादू किसी की परवाह में खुद बीमार पड़ जाएं। और हाँ, मैं वहां नहीं रुका क्योंकि उसे मेरी नहीं फिलहाल डॉक्टर्स की जरूरत है, अयांश ने दिनकर जी की बाह पर हाथ रखते हुए कहा। तभी दिनकर जी ने अयांश का हाथ झटक दिया। मत बन अंशु, ऐसा मत बन, तुझे बचाते हुए उसकी हालत हो गई है वो, और तू अब भी उसके बारे में सख्ती से बात कर रहा है बेटा, जबकि इस वक्त उसे साथ प्यार की जरूरत है। शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी उसने चोट खाई है, भूल मत क्रमशः।